کرنا چاہیے کہ میں کیا چاہتا ہوں. اس بات پر گہرا وچار کرنے کی آوشکتا ہے اور یہ ایک نشچت ہو جائے نا درڑتا سے یہ چل پہ اس کی انتی ہوگی. آج یہ وچار کر رہے میں کیا چاہتا ہوں تو سامان ریتی سے ہم سکھ چاہتے ہیں. یہ بات ایک سکھ چاہتے ہیں یہ بات سامان ریتی دیکھتی ہے ان واسطو میں اس پر درڑ نہیں ہے. تو سکھ چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ دکھ نہیں چاہتے یہ ہے کہ نہیں. یہ بات تو جس سکھ سے دکھ ہوتا ہے وہ سکھ ہم نہیں چاہتے یہ بات ہونی چاہیے. اگر سکھی چاہتے ہیں اور دکھ نہیں چاہتے ہیں تو جس سکھ کے بعد دکھ ہوتا ہے اس سکھ کو تو بھوڑا چھوڑ ہی دینا چاہیے. اس کی اچھا تو چھوڑ ہی دینی چاہیے. تم کہیں بھی دیکھا جیسے دکھ ہوتا ہے دکھ ہم چاہتے ہیں نہیں. تم نہیں چاہتے ہیں اس پر خوب وچار کرو. وہ ہمیں نہیں چاہیے. جس کسی سکھ سے دکھ ہوتا ہے وہ دکھ بالکل ہمیں نہیں چاہیے. تو اس کا ارتھ ہوا کہ جس سکھ کا پھل دکھ ہوتا ہے وہ سکھ ہمیں نہیں چاہیے. تب ہو گئی دکھ ہم نہیں چاہتے. اس پر دڑھتا کب ہوگی کہ جس سکھ کے پریڑام میں دکھ ہوتا ہے وہ سکھ ہم نہیں چاہتے. یہ بات نہیں کرتے. جب تک اس سکھ کو ہم لیتے ہیں چاہتے ہیں تو ہم سکھ ہی چاہتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دڑھ نہیں دکھ آتا ہی ہے سکھ سے اروچی کرنے کے لیے. یہ ودھان ہی اس واسطے ہے بھگوان کا کہ جس سکھ کا پرینام دکھ ہوتا ہے وہ ودھان اس لیے کیا گیا ہے کہ ایسے سکھ کو آپ مت چاہو. یہ سوتنترتا دی گئی ہے جیو کو کہ تم تو چاہو تو کرو پرنتو یہ دکھ تم نہیں چاہتے. تو جس کا پرینام دکھ ہوتا ہے وہ سکھ ہمیں لینا ہی نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے گا تو ضرور انتی ہو جائے گی اس میں سندیہ نہیں ہے. پرمانند تتو کی پراپتی ہو جائے گی. اتنی بلکل بات. اب یہ وچار کرنا کہ دکھ کب ہوتا ہے بھائی. دکھ تب ہوتا ہے کہ جب اپنے سے کسی کو بڑا دیکھتے ہیں تو بچار ہوتا ہے ایسے ہم بھی بن جائیں. یہ کمی ہے. اتنے ہم نہیں بنے. اتنے ہم دھنی نہیں بنے. ایسے ودوان نہیں بنے. اتنے پدھاری ہم نہیں ہوئے. ایسا پد مل جائے. اس سے سدھ ہوا کہ آپ سروپری سکھ چاہتے ہیں. سروپری بڑھنا چاہتے ہیں تو سروپری سنسار میں تو دو آدمی بھی بڑھ نہیں سکتے. ایک بنے گا. سروپری تو ایک ہی ہوگا. دو نے سروپری تو نہیں ہو سکتے نا. اور پرماتم تو تمہیں سب سروپری ہو جائے گی. سبھی سروپری برابر کوئی رہے گا نہیں. سب بھگوان کے بھکت ہے. سو تتوجی ہے. سو جیون مکت ہے. تو وہاں پہ برابر دو نہیں رہے گا. ایک ہی ہو جائیں گے. سرو پر سب بن سکتے ہیں. تو دوسرے کو سکھی دیکھ کر کے اپنے ہردے میں ایرشا ہوتی ہے. دکھی دیکھ کر کے پرسنتا ہوتی ہے. یہ ابھیمان اور ابھاو کی آگ ہے. میں بڑا ہوں تو ابھیمان آ جائے گا. میں تو چھوٹا رہ گیا تو دین تک کی آگ لگ جائے گی. یہ ڈر نہیں پڑے گا. ان دونوں سے چھٹکارا تبھی ہوگا यंग लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नादिनं तथा यस्मिन् स्थितो दुखे न गुरुणा भी बचा लेते। सुख तो बढ़कर होता नहीं उससे, दुख वहां पहुंचता नहीं, ऐसे आनंद की प्राप्ति। और वो प्राप्ति बिल्कुल हमारा अधिकार है। मनुष्य जन्म जिस दिन मिल गया उस दिन ऐसे आनंद की प्राप्ति का पूरा अधिकार मिल गया। और केवल कमी यही है कि हम जो अधूरे सुख को चाहते हैं दुख पाते हैं। इसमें एक गलती होती है, मनुष्य समझता है अभी ये काम है पीछे करेंगे, अभी थोड़ा सा कितना जरूरत है पीछे यही करेंगे, इतना और हो जाए पीछे यही करेंगे। बिल्कुल भगवान पूरी करते हैं स्वतः, वो सामग्री पूरी दे रखी और फिर आवश्यकता होगी तो वो दे देंगे। उदारता है भगवान का दरबार, महान उदार। अरे पाल पोषण की बात भी देते हैं, बुद्धि देते हैं, दुरुपयोग करते हैं फिर भी देते हैं, बल का दुरुपयोग बल देते हैं, विद्या का दुरुपयोग विद्या देते हैं, योग्यता का दुरुपयोग फिर भी योग्यता देते हैं, दुरुपयोग करने पर भी देते हैं, तो सदुपयोग कर नहीं रहे। देने का स्वभाव है, देते ही ऐसे चाहो तो उस पर तो बहुत प्रेम करेंगे भगवान। हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, ऐसी बात। इस वास्ते केवल यही बात मैं चाहता क्या हूँ, जिसमें दुख होता ये नहीं लूंगा भाई, ये तो नहीं लूंगा बिल्कुल, क्योंकि उनके परिणाम में दुख होता है, हमने भोगा है, तो अब ये नहीं लेना, बिल्कुल ये स्वीकार नहीं करना। सच्चे निहाल हो जाओ मनुष्य एकदम पक्का। इसमें शंका हो तो बोलो, भगवान इस जीव के लिए इतने लालाए थे, इतना प्रेम करते, इतना स्नेह करते, माँ भी नहीं करती। इतना ये चाहता है भोग तो भोग देते हैं, ये जो चाहता मान चाहता मान देते हैं, रुपया चाहते रुपया देते हैं, आप चाहो जैसे देंगे। भगवान कहते हैं कि ऐसा मैं दे दूंगा, तुम चाहो सो ही देता हूँ मैं, परंतु तुम मेरे सिवा दूसरी को चाहते हो तो दूंगा तो सही, बड़ हो रहे या नहीं। अरे मेरे को चाह लो तो बस जाऊंगा नहीं कभी, और दूसरे रूप में मैं ठहरूंगा नहीं। है भगवान, भूख लगे तो रोटी रूप से भगवान ही आते हैं, प्यास लगे तो जल रूप से भगवान ही आते हैं, नींद लेना चाह तो नींद रूप से भगवान ही आते हैं, सब चीजें जो चाह तो उस रूप से भगवान आते हैं, परंतु वो भगवान का पूर्ण रूप नहीं है, अधूरा रूप है। तुम चाहते हो इस वास्ते तुम्हारे लिए वो रूप धारण करते हैं, भगवान का असली रूप वो नहीं है। असली रूप वो है जिसमें सुख का अंत न हो, अनंत सुख और स्थायी सुख और सर्वोपरि सुख, वो स्वरूप है परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, आनंद अंत। इस वास्ते उसको ही हम चाहते हैं, केवल ही इस पर दृढ़ हो जाए तो भाई दूसरा सुख नहीं जाएगा, जिसमें दुख मिलता वो नहीं जाएंगे, जरूर उन्नति हो जाएगी उसमें, उसकी उन्नति होगी। ये जो दुख मिला हुआ सुख चाहता रहता है, जिसका परिणाम दुख होता है, सुख को बार बार चाहता रहता है, यही गलती है खास बड़ी। तब तो आप दुख नहीं चाहते बात कहने ठीक है, और जब तक जिसका परिणाम दुख आता सुख चाहते हैं, तब तो ये नहीं कह सकते हम सुख ही चाहते हैं, क्यों ये होगा सुख दोनों चाहते हैं, अथवा अधूरा सुख चाहते हैं पूरा सुख नहीं चाहते। स्वाभाविक बात होनी चाहिए, जिसमें दुख हो तो वो हम नहीं चाहते, कुछ भी हो जाए चाहे कितना ही बढ़िया हो वो हमें नहीं जाना। और वो सुख मिल सकता है मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर उसका पूरा अधिकारी है, ऐसा देव शरीर भी अधिकारी नहीं है। ऐसा निश्चय कौन कर सकता है गीता ने कहा है भाई भोगेश्वरीय प्रसन्नता न पर्याप्रेक्षण व्यवसायी आत्मी का बुद्धि समाधो न विधि अनिश्चयात्मक का बुद्धि भोग और ऐश्वर्य चाहते उनकी ऐसी बुद्धि हो नहीं सकती। भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति है संग्रह की सुख भोग की ये जब तक रुचि है तब तक ऐसे महान सुख के लिए आप अधिकारी हो ही नहीं सकते। अधिकारी हो भी नहीं मिलते नहीं अधिकारी होते ही मिल रहा बाकी रहेगी मिलेगी वो तो है ही क्यों बोलो शंका और बोलो अध्यक्ष तैयार हुई आवाज थी अब आज दिन तक समय गया तो गया अब लो नशा नहीं अब लो नशा ही फिर तो ऐसी एक अभिलाषा है भी ऐसे आप तैयार हो गया। देखो एक आनंद खूब मौजूद आनंद मस्ती में आपकी दृष्टि है नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं फिर और क्या तेज लग रहा अर्चना हो जो पूछो तो ये अर्चना है इसमें ये बात आई ये बात लगी फिर विचार करो उस पर नारायण 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 नारायण
राम 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 हम केवल सुख ही चाहते हैं इसकी कसौटी ये होगी कि जिस सुख के बाद दुख मिलता है उस सुख में हम प्रवृत्त नहीं होंगे इस संबंधी यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 25 जुलाई 1981 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीमासर के मूल्य मनोहर धोरे पर हुआ। राम राम राम
हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम
हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम
हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे हरे शरणम हरे
नारायण 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 बात करी थी उसने ये बात कही गई अपने आप का जो स्वरूप है उसमें स्थित होना और उससे भी बढ़कर के है कि अपने में परमात्मा को देखना क्षेत्र ज्ञान साथ ही मान बुद्धि सर्व क्षेत्र भारत इदं रईदं को हम तो यह क्षेत्र मृत्यु विधि है वो इदं दर्शन हुआ इसको जाने वो क्षेत्र एक दियो वेत्ति तंत्रा वो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ चापि माम बुद्धि और क्षेत्र की भी जान मेरे को जान, क्षेत्र की भी मेरे को जान, तीन हुआ ना क्षेत्र क्षेत्र की और मां, ये सातवें अध्याय में भी अपरा परा और अहम तो मेरा बोल लो भाई अपरेयम इतस्तम्यम प्रकृति बुद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दमदारी रे जगत एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि चिवधारी अहं कृष्णस्य जगत प्रभो प्रलय तथा वहां भी अपरा परा और अहम तीन का ऐसे तेरहवें अध्याय में पंद्रहवें अध्याय में पंद्रहवें दिन अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम सदा सर्वाणि भूतानि कूटस्तु अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मयुक्तिदारित तो क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम ऐसे तीन नाम से कहा। ऐसे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से किसी संपूर्ण भूतों में ईश्वर रहता है सबके हृदय समय तो संपूर्ण भूत अलग हुए ब्राह्मियों ब्राह्मियों से मंत्रा द्वारा हिंदू हुआ सही अलग हुआ तो शरीर और भूत और ईश्वर तीन हुए। ऐसे जगह जगह ये तीन तत्वों का वर्णन है तो क्षर नाशवान अक्षर अविनाशी और परमात्म तत्व उसका काम जो जिसका अंश ये है क्षेत्र तो उस परमात्मा को अलग जानना कि नहीं जानना ये एक प्रश्न था कि क्षेत्र है उससे अपना स्वरूप अलग चेतन ये जड़ है ये है मैं कहता हूँ ये नाशवान है मैं अविनाशी हूँ ये बदलता है मेरा स्वरूप बदलता नहीं संपूर्ण परिस्थितियां बदलती है मैं वही रहता हूँ ऐसा सबका अनुभव है। ऐसे अपना इनसे बिल्कुल संबंध रहित साक्षात अनुभव हो जाए उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके बाद मेरे को तो समझ ऐसे परमात्मा की स्वीकृति करना आवश्यक है क्या ऐसा एक प्रश्न था तो उसकी स्वीकृति करना बहुत आवश्यक है। इस विषय में जो है ध्यान देकर सुनो क्यों जरूरत है कि अपने परमात्मा के साथ एक होना है जो कि एक है पहले से ममई वांश हो जीव लोग अंश मेरा है मम ए वांश है ममांश नहीं का ममई वांश और ये सदा से मेरा है तो ये जो मेरा है उससे विमुख होकर और संसार के साथ एकता मान ली जो शरीर मिला है और छूट जाएगा उसके साथ एकता मान ले सदा रहने वाले परमात्मा का अंश होने वाला सदा रहने वाला भूतग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलय महाप्रलय में रहने वाला यही भूत समुदाय और भूतवा भूतवा प्रलय ये प्रकृति का बदलनापन है पैदा होकर जो नष्ट होता है तो शरीर सब नष्ट होते हैं प्रलय होता है सर्ग होता है प्रलय होता है सर्ग होता है फिर महाप्रलय महासर्ग होता है ये परिवर्तनशील प्रकृति के साथ में ये भी जन्मता मरता है। अब ये अलग हो जाए तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी परंतु इसने जो परिच्छिन्नता मानी थी जिस परिच्छिन्नता से अल्प में अल्पता एक सीमित बना एक पराधीनता एक इसमें सुख दुख तरह तरह कर्म बहुत सी अपनापने की एक अलग मान्यता की थी वो सूक्ष्म अहंकार उस परमात्म तत्व के साथ एक हुए बिना उसके प्रेम के बिना वो नहीं मिटेगा। विश्वास गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भाई ये सूक्ष्म जो अंश है अहंकार का ये प्रेम भक्ति बिना सुनो खबर आई प्रेम भक्ति बिना आभ्यंतर मल कब बन जाए आभ्यंतर मल जो है अत्यंत सूक्ष्मता से जो अहम है अपनी एक सत्ता, उस अपनी एक सत्ता का अभिमान एक है सूक्ष्म, जिसको मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, अर्चन नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे हो कुछ अनुभूता अनुभव, वो प्रेम भक्ति बन जाता नहीं, परमात्म तत्व तो भीतर समझ उसके साथ एक हो जाए। कारण के बीच में ये रहा, जड़ को अपना माना, उसे अनर्थ हुआ, अपना न मान अपने स्वरूप में सिद्ध हुआ, तो समझो का सुख है स्वस्थ, ये स्वस्थ हुआ, तो स्व होने से स्व में ठीक स्थिति होने पर जड़ता का संबंध मिट जाता है, तो दुख तो कभी नहीं होता, अशांति आदि की कभी नहीं होता, क्योंकि ये तो सब आते हैं जड़ के संयोग से, इसमें स्वरूप में शांति आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, परंतु अत्यंत प्रेम परमात्मा में जब होगा ना, जैसे संसार के साथ संबंध जोड़ा, ऐसे वास्तविक संबंध परमात्मा का है, उसकी स्वीकृति के बिना इसकी जो अल्पता है उसका अत्यंत अभाव नहीं होता, परिचिन्नता का अंश रहता है। उस अपने स्वरूप में भी गाढ़ स्थिति हो जाए, बहुत समय तक रहेगा तो वो शून्यता मिट जाएगी, इससे भी इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु अगर परमात्मा से प्रेम करके उसके शरण हो जाए तो बहुत जल्दी वो अहंकार मिट जाएगा। इस वास्ते परमात्मा को मानना अथवा जानना, उसको प्राप्त करना है, ये वृत्ति बहुत आवश्यक है। संसार से विमुख होकर अपने में स्थित होना और अपने से भी परमात्म तत्व की तरफ खींचना, ये बहुत श्रेष्ठ है, इससे संसार का प्रिंसिपलता छूट जाता है, अहंकार सूक्ष्मता से भी नहीं रहता, ऐसी स्थिति होती है, तो उसके लिए परमात्मा के शरण होना सबसे श्रेष्ठ, और गीता ने इसी को श्रेष्ठ बताया, सर्वगुह्य तब इसको कहा है, माम एकम शरणम द्विज सर्वधर्मान परित्यज्य, ये धर्म क्या है, ये सब के सब प्रकृति के कार्य है, तो प्रकृति के कार्यों का त्याग करके मेरी एक शरण हो जाए, तो इसका जो शरण ले रखा है संसार का, ये आश्रय ही वास्तव में बंधन कारक है, दुखदायी है, और इससे जो अपने में अच्छा मानता है, धन माने से बड़ा मानता है, विद्या माने से बड़ा मानता है, अधिकार मिल जाए, कोई पद मिल जाए तो बड़ा मानता है, ये सभी तुच्छता है, गुलामी है, पतन की तरफ जाना है, इनके साथ संबंध न कर प्रभु के साथ संबंध कर रहे तो ये संबंध जन्य अहंकार वो मिट जाता है, नहीं तो अपने में मुक्त हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, ऐसे अपने मुक्त पने का संस्कार भीतर रहता है, और परमात्म तत्व में एकदम लीन होने से ये अहंकार भी नहीं रहता, मुक्त हूँ मैं, ब्रह्म हूँ मैं, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसा ये सूक्ष्म अहम भी नहीं रहता, इस वजह से उसकी स्वीकृति आवश्यक है, ये बात थी। हाँ जी, तो परिचिन्नता को लेकर के होता है वो तो साधक पे होता है, और इसमें जो सिद्ध हो जाता अगाड़ी स्वरूप में, तो उस समय में परिचिन्नपना ऐसा नहीं रहता जैसा साधक रहता, परंतु परिचिन्नता का संस्कार रहता, तो वो परमात्मा के शरण होने से वो संस्कार बहुत जल्दी मिटता है, नहीं तो उसमें बहुत अटल स्थित रहने से स्वतः जड़ता का संस्कार मिट जाता है, उसमें देरी लगती है। इस वास्ते परमात्मा को अपने में मानना, उसके सन्मुख होना, शरण होना, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये तो थोड़ी सूक्ष्म बात है।
परमात्मा के सन्मुख होना
रहेगा, ये बात अब ध्यान देना, ये जो द्वैत बना रहेगा, द्वैत बना रह नहीं सकता, खूब गहरी रीति से विचार करो कि द्वैत होता है अहम के रहने से, चेतन केवल रह जाए अहंकार मिटने से द्वैत नहीं रह सकता, द्वैत का कारण अहंता है, ये परमात्मा और मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, ये हूँ, हूँ होना जो है, मैं परमात्मा हूँ जो होना ना, हूँ होना, ये हूँ अहंकार के कारण से है, अहंकार से परिचन्नता होती है और द्वैत होता है, अहम सर्वथा मिटते पर द्वैत नहीं होगा। परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर अहम नहीं होगा, अहम प्रकृति का कार्य है। प्रकृति से बिल्कुल विमुखता हो जाएगी परमात्मा के सम्मुख होते ही, तो चेतन तत्व रहेगा वहाँ, अहम नहीं रहेगा तो वहाँ द्वैत नहीं रहेगा।
लेकिन स्मृति जो है परमात्मा की
स्मृति
जो है
ना, स्मृति भाव को लेकर नहीं है, इसमें गहरी तरह से सोचना है। ये बात एक बहुत मार्मिक है, बहुत बढ़िया साधकों की बड़ी काम की चीज है। ध्यान देना, जैसे मैं संसारी हूँ और मैं परमात्मा का हूँ, ये दो अहंकार हुए। तो संसारी हूँ मैं, जड़ता सामने रहने से जड़ता की मुख्यता मानेगा तो जन्म मरण कभी नहीं मिटेगा, और मैं परमात्मा का हूँ इसमें चेतन की मुख्यता रहने से जड़ता तो स्वतः विलीन होती है, अपने नाश की तरफ जाती है, और चेतनता परमात्मा की तरफ है तो परमात्मा रह जाएगा और वो स्वयं रह जाएगा, अहंकार मिट जाएगा। क्योंकि जड़ता से विमुख होगा ना, जड़ता मिट जाएगी। चेतन होने पर दो रह ही नहीं सकते, दो रहते ही अहंकार से। स्वयं होगा, देखो एक स्वयं होता है, एक अहम और बुद्धि से बात होती है, और एक स्वयं होती है। ये बात थोड़ी समझने की है। स्वयं की जो बात है ना, मैं मुक्त हो जाऊं, मेरा दुख मिट जाए, ये ठेठ स्वयं से उठती है, ये अहंकार से नहीं उठती है। ये ध्यान देने की बात है खास। मेरा कल्याण हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, मेरा दुख मिट जाए, सदा के लिए मेरे को आनंद हो जाए, मुक्त हो जाऊं, ये जो बात है ना, ये तरह तरह के संकल्प तो मन बुद्धि के साथ होने से होते हैं, पर मैं मुक्त हो जाऊं ये उठती है ठेठ अपने आप से, स्वयं से। मैं अहंकार का लेश होगा तो अभी तो अहंकार का लेश है, अभी तो मैं परमात्मा का हूँ, मैं संसारी हूँ, इसमें अहंकार है ही। होते हुए भी संसारी हूँ मैं, संसार की मुख्यता, और परमात्मा का हूँ शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, इसमें चेतन की मुख्यता, ये तो मानना ही पड़ेगा, कहेगा ना। अब अहंकार रहने में दोनों कारण होते हुए भी परमात्म तत्व के साथ मैं एक हूँ, ये जो बात जहाँ आएगी, मुक्त हो जाऊं वहाँ चेतन रहेगा, जड़ नहीं रहेगा। मुक्ति में अहम नहीं रहता है, चेतन रहता है। इसमें बहुत मतभेद है, ये जो आभासवाद है, अवच्छेदवाद है, अजातवाद है, कई है इसमें जीव के मानने में भी, क्योंकि जब तक प्रतिबिंब मानते हैं, आभास मानते हैं, अवच्छेद मात्र प्रतिबिंबवाद आभासवाद ये मानते हैं, तो उनमें इसका ठीक समाधान नहीं है। गहरी रीति से ऊंचे ग्रंथों में विचार किया जाए तो वो मुक्त होने वाले का भाव रहे, अहम वो हुआ बद्ध, और मुक्त होते ही वो तो मिट गया, तो अभाव होता है मुक्ति में, उसकी सत्ता नहीं रहती। तो ऐसी मुक्ति कौन सा है जो अपना अभाव हो जाए। इस बात से मुक्ति की इच्छा आभास में नहीं है, चिदाभास में नहीं है, स्वयं है, स्वयं से उठती है। क्योंकि सुख दुख का नाम भोगतृत्व हेतु रुचि, जो पुरुष है सुख दुखों के भोगतापन में हेतु होता है, तो सुख दुख तो प्रकृति के संबंध से होते हैं, परंतु अंत में परिणत किसने होते हैं जाकर, सुखी और दुखी कौन होता है? जो सुखी और दुखी होता है वही मुक्त होता है, क्योंकि बद्ध वही है वही मुक्त होता है। तो बद्ध पड़े का अनुभव स्वयं करता है, इस बात से मुक्ति स्वयं की होती है। वहाँ प्रसन्नता नहीं रहेगी, वहाँ प्रसन्नता में हेतु अहम है, उसमें चेतन नहीं है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार भी प्रसन्नता में हेतु अहम है। खूब विचार हुआ, चेतन तत्व है उसमें दो कैसे होंगे, अहम के बिना चेतन तत्व में दो कैसे होंगे। खूब विचार के हो गया उत्तर, अनुभव करने वाला नहीं रहेगा, अनुभव मात्र रहेगा, अनुभव करने वाला नहीं रहेगा। करने वाला रहेगा तो अहंकार है, अनुभव करने वाला अगर है तो अहंकार है। इस वास्ते गहरी विधि से ज्ञानी कोई नहीं हुआ और कोई नहीं होगा, ज्ञानी है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं। ज्ञानी होता अहंकार होता है, ज्ञानी कैसे हुआ, ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है, बोधवान नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता। हाँ शुरू तो है ही, चेतन है, स्वरूप तो ही है, सुख दुख स्वरूप नहीं है, जो सुख होता है दुखी होता है दोनों होता है, स्वरूप का स्वरूप दोनों रहता वो है।
ये बात अभी बिल्कुल साफ नहीं हो रही है कि ये ज्ञान अनुभव कर लेने के बाद कि मेरी सत्ता अलग नहीं है, मैं के रूप में वो चेतनी जो है वो भाग रहा है, तो इसमें फिर आखिर में क्या कमी रह जाती है आपके?
इसमें कमी हमारे हिसाब से जो परिचिन्न पने का संस्कार था ना वो रहता है, और वो भी बहुत देर वहाँ स्थित रहेगा तो मिट जाएगा, परंतु परमात्मा के चरण होने से विलक्षण बात होती है। ये तो परिचन्न का अहंकार मिटने में सहायता होती है, इसके सिवाय दूसरी बात है, अभी समय हो गया। हाँ। फिर विचार करो आप, फिर पूछ, ये विलक्षण बात बहुत है।
संसार और शरीर से विमुख होके अपने स्वरूप में स्थित होना तथा अपने स्वरूप से परमात्मा की ओर खींचना, इसमें एक रहस्य है कि उसका सूक्ष्म अहंकार भी मिट जाए। मैं ज्ञानी हूँ या ब्रह्म हूँ, यह सूक्ष्म अहंकार उसे मिट जाता है। इस संबंधी यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 26 जुलाई 1981 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद ढूंढा करके मूल्य मनोहर धोरे पर हुआ। राम राम राम
होता है, तब तक ये होता है मैं ब्रह्म हूँ, मेरी सत्ता नहीं है, ये नहीं होता। सत्ता है वो सत्ता में साक्षात शुद्ध ब्रह्म हूँ, ऐसा होता है। ब्रह्म हूँ तो वो सूक्ष्म अहंकार रहता है, उसके बाद उससे भी सूक्ष्म हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि ये साधन है, ये वास्तव में तत्व नहीं है, ये साधन है। तो साधन करते करते ये जो ब्रह्म के साथ में अहंता का है ना, ये भाव थोड़ा सूक्ष्म रहता है। दो तरह की साधना है, एक तो सब कुछ परमात्मा ही है, ये है एक मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद घन हूँ, ऐसी उपासना होती है। तो उस उपासना में वो सूक्ष्म अहंकार रह सकता है, सब कुछ परमात्मा ही है, मैं नहीं हूँ, इसमें नहीं रहेगा। तो इसमें नहीं रहेगा, तो इसमें सब परमात्मा ही है, तो परमात्मा के सत्य पहले से एक हो गया ना, वो मैं नहीं हूँ परमात्मा ही है, तो पहले से ही अहंकार परमात्मा में हो गया ना वो लीन, तो इसमें नहीं रहेगा। परंतु तो मैं ब्रह्म हूँ, ये जो उपासना है ना, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा में सोच सुनकांक्षी समस्त सर्वे भूतेशु, ऐसा जो है ना, ये इधर रहेगा सूक्ष्म अहंकार। तो वो सूक्ष्म अहंकार उसको अनुब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वे, बिल्कुल राग द्वेष हर्ष शोक नहीं होगा, और समस्त सर्वेश भूतेश प्राणियों में समरूप से हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा ऐसा उसको भाव हो जाता है। ऐसा होने पर भी मद भक्ति लभते पराम, ये परा भक्ति प्राप्त होती, फिर तो परा भक्ति है वो गाढ़ स्थिति को कहते हैं ब्रह्म में, और परा भक्ति करके उसका नाम है जो प्रेम प्रकट हो जाता है। बात ऐसी मालूम रहती है कि जैसे इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम और एकद्यो वेतितं प्राहु क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये तीन पंक्तियां आई, तो पहले में क्षेत्र, दूसरे में क्षेत्रज्ञ और चौथे में मां विद्धि मेरु ज्ञान। तो एकद्यो वेत्ति है वो तो इसको जानता है, और माम विद्धि है वहाँ तू मेरे को जान, या ज्ञानी। इसका तात्पर्य क्या है कि ये स्वयं होकर के शरीर की तरफ दृष्टि करता है, तब तो ये क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ होता है, और ये इधर से दृष्टि हटाकर परमात्मा की तरफ है जान ले, परमात्मा है ऐसा जानेगा, तो क्या होगा कि क्षेत्र की तरफ से ये विमुख हो जाएगा। तो विमुख होने पर ये जो स्वयं रहा और एक माम बुद्धि मेरे को तू जान, तो परमात्मा को जाने, तो परमात्मा में मेरे में क्या फर्क हुआ कि वो सर्व क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों में परिपूर्ण है परमात्मा। क्षेत्रज्ञ तो अपने एक क्षेत्र को जानने वाला होता है, और वो परमात्मा संपूर्ण क्षेत्रों में परिपूर्ण है, तो उसकी तरफ वृत्ति होने से इसका सूक्ष्म अहंकार मिटेगा। अब वहाँ पर जो उसकी तरफ हुआ है, होकर देखता है, तो मैं और मेरा रहता है ना संसार में, ये दो चीज हुई। मानो परमात्मा का अंश है, तो वो परमात्मा का अंश प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से दो तरह का संबंध जोड़ता है। एक तो संबंध जोड़ता है कि जिसमें अपने साथ में अभिन्नता करता है प्रकृति को, जैसे शरीर के साथ संबंध जोड़ा तो शरीर के साथ अपनी अभिन्नता कर ली, मैं ही शरीर हूँ, ऐसा शरीर के साथ में एक दूसरी वस्तुओं के साथ में संबंध जोड़ा तो ये मेरी है, तो ये मैं और मेरा दो पैदा हुआ, ये प्रकृति के संबंध से ये माया हुई। अब मैं और मेरा है, इसमें मैंपन छोड़ दे, मेरापन छोड़ दे, तो मेरापन छोड़ दे तो मैं भगवान का वो हो जाए, और मैंपन छोड़ करके शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का बाध करे, तो शरीर का बाध करने पर अपने में सूक्ष्म अहंकार रहता है थोड़ा सा, तो वो रहता है, पहले अहंकार लेकर के चला है ना मैं ब्रह्म हूँ ऐसा, इस बार से उसकी उपासना होते होते अंत में थोड़ा सा रहता है, तो वो अहंकार परमात्मा सब जगह है ऐसा विधि जाना ना उसको, तो परमात्मा की तो वृत्ति जाते ही परमात्मा में आकृष्ट होगा। जैसे शरीर के साथ अपनी एकता जानने से सजाए शरीर के सजातीय पदार्थों में आकृष्ट होता है, जिससे ममता आसक्ति होती है, तो वो आकृष्ट होता है शरीर के साथ आप एक मान लेने कारण से, अब इससे विमुक्त होकर विरुद्ध होकर परमात्मा की तरफ जानेगा, परमात्मा को जानेगा तो परमात्मा में आकृष्ट होगा। तो परमात्मा में जो आकृष्ट होता है वही भक्ति है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति है। परा भक्ति मिलेगी, परा भक्ति क्या होती है, एकदम भगवान के साथ में ही प्रेम लक्षणा भक्ति। पहला जो श्रवणन कीर्तनन जिसमें ये नौ प्रकार की भक्ति है, ये है साधन भक्ति। साधन भक्ति के बाद में परमात्मा के साथ एक होकर जो भक्ति है वो है साध्य भक्ति। तो वो जो साध्य भक्ति है वो अद्वैत सिद्धांत से मैं ब्रह्म हूँ, अपने ब्रह्म स्थिति है, उससे अगर यह ये पराभक्ति, इसमें फिर अहंकार नहीं रहेगा, दूरगंध नहीं रहेगा, तो उसमें परमात्मा की तरफ खींचता है। अब जो परमात्मा ही खींचता है तो यह एक विलक्षण बात है। वो क्या है जो जिसका संकेत किया सही थी, और एक बात है, वो बात ये है कि परमात्मा है उसमें जो अपनी स्थिति होती है, तो परमात्मा में एक विलक्षणता है, वो सौंदर्य है, माधुर्य है, ऐश्वर्य है, सौस्तव है, ऐसे विलक्षण विलक्षण गुण है परमात्मा में अलौकिक। तो उन गुणों की तरफ ध्यान मार्ग तो ध्यान नहीं देता, उन गुणों को भी माइक मान लेता है, ऐसा मान करके मैं ब्रह्म निश्चित हो जाता है। परंतु जो भगवान की तरफ खींचते हैं तो उसमें क्या बात होती है, एक विलक्षण बात होती है। जैसे भूखा आदमी है, वो भूखा आदमी है, वो भोजन करता है, तो जो क्यों भोजन करता है क्यों जो उसकी भूख मिटती है, इसलिए साधन नहीं करता तो उसको जो भूख रहती है अभाव खटकता है। अब वो भगवान के तरफ जो जो चलता है, जितना जितना चलता है उसमें उतनी उसकी भूख मिटती है। तो भूख मिटती है, ये संसार की इच्छा मिटी। अब संसार की इच्छा मिटी और परमात्मा तत्व की इच्छा जागृत हुई। ये दो इच्छा होती, परमात्मा तत्व जागृत होती इच्छा। अब ये दो इच्छा रहते हुए इसका भेद नहीं मिटता, परमात्मा से अभिन्नता नहीं होती। तो वो इच्छा संसार की मिटती चली जाती है, परमात्मा की इच्छा बढ़ती चली जाती है, जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है, अथवा प्रेम की पिपासा। ज्ञान मार्ग में जिज्ञासा बढ़ेगी और इसमें प्रेम की पिपासा भगवान को खींचा बढ़ेगा। तो जिज्ञासा होती है वो ज्ञान से शांत हो जाती है। जब बोध होता है जब एक शुद्ध सच्चिदानंद घन के सिवाय कुछ भी नहीं है, तो जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है। तो क्या हुआ कि ये जिज्ञासा की पूर्ति होने से संसार की तरफ खिंचाव नहीं होता। तो संसार की तरफ खिंचाव है, ये भूख हुई, भूख इच्छा मिट गई, परंतु उसमें थोड़ी स्थिति होने के बाद फिर उसमें एक कमी का अनुभव होता है। वो अहंकार है सूक्ष्म, वो कमी का अनुभव होता है तो परमात्मा की प्राप्ति इच्छा जो होती है। ये रामानुजाचार्य महाराज का सिद्धांत है कि जीव अपने को जानता है, उसी का नाम है ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान होने पर परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति का अधिकारी तभी होता है जब संसार से बिल्कुल निर्लिप्त होकर के और ब्रह्म ज्ञान अपने ज्ञान में स्थित हो जाता है, तब भक्ति का अधिकारी होता है। तो भक्ति का अधिकारी मन भगवान की तरफ ही केवल अनन्य भाव से उसका मन जागृत होता है। मन क्या, वो स्वयं खिलता है उधर। तो एक बात ये बताई रही कि हम कोई भी काम करते हैं, चाहे परमात्मा की तरफ चाहे संसार की तरफ, उसमें जड़ चेतन दोनों रहते हैं। दोनों रहते हुए भी संसार की तरफ जड़ की मुख्यता रहती है, परमात्मा की परमात्मा की मुख्यता रहती है। ऐसे होते हुए भी परमात्मा तत्व जो है चेतन हुए तो नाश नहीं होता, अनंत युगों तक भी ये संसार की तरफ चलेगा तो वो चेतन साथ में रहेगा तो मुक्ति नहीं होगी। पर परमात्मा की तरफ चलते ही जड़ तत्व है वो तो परिवर्तनशील है, नाश की तरफ स्वतः ही जा रहा है। उस वो नाश की तरफ जाने से विमुख होने से वो उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। तो उसका संबंध विच्छेद होते ही इसको क्या मिलती है, दुखों का नाश हो जाता है। दो मानते मुक्ति, एक दुखों का नाश, एक परमानंद की प्राप्ति। तो दुखों का नाश तो होता है कब, जब संसार के साथ संबंध विच्छेद होता है। संसार के साथ जितना ही संबंध रखता है उतना ही उसको दुख होता है। ये अगर संबंध को चेंज कर दे तो आज दुख मिट जाए, परंतु ये बहम पड़ा हुआ है कि संसार की वस्तु में अधिक होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, भोग अधिक भोगो तो सुखी हो जाऊंगा, संग्रह अधिक करूँ तो सुखी हो जाऊंगा, ये बिल्कुल ही गलत है। सोलाना दी सोलाना इसमें रति पर बाल जितनी बात भी सच्ची नहीं है, इससे सुख हो नहीं सकता, असंभव है। कारण कि आप तो स्वयं परमात्मा का चेतन और ये जड़ चीजों का संग्रह संयोग से सुख, ये जो संग्रह सुख भोग की इच्छा है, ये ही वास्तव में महान दुखों का कारण है। तो ये छूट देने से दुख तो मिट जाता है। अब दुख मिटने के बाद में जो परमानंद की प्राप्ति है, वो ज्ञान मार्ग में तो ब्रह्म के साथ एकता करता है, जिसमें तत्पद है जो स्वम पद है वो तत्पद के साथ एकता करता है, तब पूर्णता मानते हैं ज्ञान मार्ग में। तो वृक्ष आत्मा नहीं अथो तत्पद के साथ एकता की जरूरत क्यों रहती है कि इसमें स्वम पद का साक्षात्कार होने पर भी एक जो अलग परिच्छिन्नता अपनी मानी थी उसका संस्कार नहीं मिटता है। इसका जब तक स्वम पद तत्पद के साथ में एकता नहीं हो जाती, तब तो ज्ञान मार्ग में तत्पद में एकता होती है, तब इसकी युवा परिच्छिन्नता मिटती है। पर इसमें भी ज्ञान की मुख्यता रहने से सूक्ष्म अहंकार रह सकता है बहुत दूर तक। अब इससे जो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाए, तो भगवान में जो ऐश्वर्य है, माधुर्य है, वो सौंदर्य है आदि जो भगवान में विलक्षण है, वो विलक्षण उससे विमुख होने से ही संसार में असत का संग लेने से ही संसार में सुंदरता दिखती है। संग इसमें ऐश्वर्य दिखता है, रुपये पैसे आदि में विलक्षणता दिखती है। तो इसकी विलक्षणता की तरफ जड़ के संबंध से खींचता है, परंतु परमात्मा का अंश होने से परमात्मा में जो विलक्षणता है, वो विलक्षणता की तरफ इसका मन रहता, इसका स्वयं का विचार रहता है, परंतु रहने पर भी असत के संग से नाशवान ऐश्वर्य में, नाशवान माधुर्य में, नाशवान सूर्यता में, नाशवान सुंदरता में इसका मन खींचता है। तो इन्हें खींचता है ना मन, तो मन असत का संबोधन हो रहे थे, पर इनके भीतर में इसकी भूख है। वो भूख जब जड़ता का संबंध सर्वथा विच्छेद हो जाएगा, तब परमात्मा में आकर्षण पैदा होगा, आत्म परमात्मा में एक आकर्षण पैदा होगा स्वतः। वो आकर्षण इतना विलक्षण है कि जो सूक्ष्म अहंकार भी मिटा देता है, जो सूक्ष्म अहंकार में स्वयं का आकर्षण होता है, इस बार सूक्ष्म अहंकार मिट जाता है। परमात्मा के साथ एकता न करने से वो सूक्ष्म अहंकार बहुत समय तक रह सकता है, ख्याल न रखने से। जैसे अभी आपको बताई तत्पद के साथ में एकता, अथवा तत्पदता के साथ खिंचाव, तो वो जो खिंचाव है उससे इसकी सर्वथा जिज्ञासा पूर्वक तो ज्ञान से भी हो गई, पर इसमें कुछ भी कमी होगी, कुछ भी कमी नहीं रहेगी, परमात्मा के साथ पूर्णता हो जाएगी। तो विलक्षणता ये होगी कि परम प्रेम की जागृति होगी। तो मुक्ति तक तो जैन भी मानते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते वे भी केवल ये पद मानते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं, जिसको केवल ज्ञान अपने ज्ञान हो गया उसमें ज्ञान रहेगा। तो ये अलग अलग आत्मा रहती है और अद्वैत नहीं होता। ऐसे अगर वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए तो मुक्ति हो जाए, संसार संबंध विच्छेद हो जाए, यहाँ तक तो वे भी साथ में है, परंतु परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए यहाँ भक्ति की विलक्षणता आती है, यहाँ अलौकिकता आती है, जिसमें कि सूक्ष्म अहंकार भी न रहे, किंचित भर भी अहंकार न रहे, तो परमात्मा का प्रेम होता है। तो अब दो तरह की इच्छा, एक संसार की इच्छा, एक परमात्मा की इच्छा। तो संसार की इच्छा तो मिटती है और परमात्मा की इच्छा पूरी होती है, इसलिए से मिटती है। ये तो इच्छा मिटानी पड़ेगी, नहीं तो पूरी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि अधूरी चीज है ना संसार, तो सभी इस बात तो पूरी होगी नहीं। और परमात्मा की इच्छा जागृत होगी तो जब तक संसार की इच्छा रहेगी तब तक वो पूरी नहीं होगी। ये सर्वथा होने के बाद में वो जिज्ञासा जब पूरी होगी, परमात्मा की प्रेम विभाषा वो पूरी होगी, तृप्ति होगी। इस बात संसार की निवृत्ति है, मुक्ति होना है, ये संसार से मुक्त होना भी एक साधन है, ये साध्य नहीं। संसार से मुक्ति है, ये साधन है। अब ये यहाँ आते हुए डर लगता है कि साधन कैसे कहा जाए। मुक्ति के बाद और क्या होता है? मुक्ति के बाद होता है जैसे भोजन करने पर भूख मिटने के बाद क्या होता है? फिर भूख मिटे कुछ नहीं होता। तो भूख मिटी किसके लिए? तृप्ति के लिए। तो तृप्ति अगर यही ना तृप्ति फगा भूख का मिटना है वो साधन, और इसके बाद में तृप्ति होती है। ऐसे परमात्मा तत्व के साथ एकता होने से इनकी पूर्ण तृप्ति होती है। वो तृप्ति जब तक अपनापन कुछ भी रहता है तो परिच्छिन्नता का संस्कार रहने से उसका पूर्णता का अनुभव अपने आप में तो होता है। उसका ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते समस्त सर्वेषु भूतेषु सब जगह शाम सच्चिदानंद ब्रह्म है। ये साक्षात में सिद्ध मना निर्दोष समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मण के सिता। तो ये ब्रह्म में स्थित होते हैं तो ये ब्रह्म भूत होता ब्रह्म भूत अवस्था है। ब्रह्म भूत अवस्था के बाद में पराभक्ति होती है, वो विलक्षण होती है, जो भगवान का सौंदर्य ऐश्वर्य आदि की तरफ दुख होता है, उसकी प्राप्ति होने से फिर विलक्षण तृप्ति होती है। ये बात होती है वो होती है अहम का सर्व का अभाव होने पर अहम का अभाव हो गया। वो इस वर्ष एक होकर दो हो गए। कल मैंने संशय ये कहा था ज्ञान में दो होकर एक होते हैं और भक्ति में एक होकर दो होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ही दो रूप हो गए, एक श्री जी के रूप से एक कृष्ण रूप से, तो भगवान के आधे अंग से श्री जी निकले और भगवान आधे अंग से आप कृष्ण हुए हैं। तो ये एक होकर दो हुए, तो एक होकर दो होते हैं। उसमें क्या होता है? अहम नहीं होता है। भेद पैदा करने वाली होती है अहंता, अहम वहाँ नहीं है। अहम है प्रकृति का अंश, महाभूतान्य अहंकारो। तो ये प्रकृति का अंश साथ में रहने से भेद होता है। प्रकृति का अहंक मिट जाने से बाद में भेद और अभेद विलक्षण बात होती है। ना भेद कह सकते ना अभेद कह सकते, उसमें एक उछाला होता है, विलक्षण एक प्रेम की लहर होती है जिसमें प्रतिक्षणम वर्धमानम बताया है। ज्ञान का अखंड आनंद है, अद्वैत आनंद है, स्थिर आनंद है, और भक्ति में एक प्रतिक्षण वर्धमान ऐसा विलक्षण एक आनंद है जो बढ़ता ही रहता है, वो अनंत आनंद है। तो अनंत आनंद कब बढ़ता है? कि जब एक और दो होते हैं तो प्रेम विलक्षण बढ़ता है। इस वास्ते कृष्ण भगवान को प्रेमावतार कहते हैं। तो प्रेम में ये अलौकिक विलक्षण बढ़ता है जिसमें भी रास लीला होती है, रास होता है। इसमें एक एक को देख करके श्री जी को देखकर ठाकुर जी को, ठाकुर जी को देखकर श्री जी को, जो प्रेम बढ़ता है रस बढ़ता है। तो ये अलौकिक रस बढ़ता है, ये दो होने से बढ़ता है, दो होते हुए एक होने से बढ़ता है, एक होते हुए दो होने से बढ़ता है। और इसका नित्य योग है, नित्य वियोग है, वियोग में भी योग, वियोग में भी वियोग, और योग में भी योग, योग में भी वियोग, ऐसी इनकी लीला चलती रहती है। उसमें एक रसा स्वादन होता है, वो विलक्षण होता है, वहाँ प्रकृति का संबंध नहीं होता। प्रकृति के संबंध वाला द्वैत वहाँ नहीं होता, केवल चिन्मय तत्व भी होता है जो चिद विलास कहते हैं उसको। केवल चिद आह्लादनी शक्ति सचिद आनंद है ना, सचिद तो भगवान रहे आनंद रूप से रही श्री जी, तो आनंद रूप से श्री जी रहती। तो श्री जी क्या है? श्री जी का ही आश्रय लिया जाता है भक्ति मार्ग में, भक्ति का आश्रय लेते हैं। ज्ञान मार्ग में उसका नाम ब्रह्म विद्या है और इसके नाम श्री जी है। तो उसका आश्रय लेने से क्या होता है कि वो भगवान की तरफ जो खिंचाव है ना, ये है श्री जी का स्वरूप। भगत का जो भगवान की तरफ केवल खिंचाव, इसका नाम है श्री, इसका नाम है राधा, इसका नाम है सीता। तो केवल भगवान की तरफ दिखने जाओ और कोई किंचित मात्र, कभी भी किंचित मात्र कोई वासना पैदा नहीं हुई, केवल भगवान की तरफ खिंचित है। तो भगवान की तरफ केवल खिंचेगी स्त्री भी हो गई और वो पूर्ति जिससे होती, जिससे मिलन होता वो कृष्ण हो गए। अब वो पूर्ति होने पर दोपड़ा दिखता ही नहीं और वो रस लेने के लिए दो तक दोपड़ा हो जाता है। तो योग में भी योग, योग में भी योग, ऐसी बात होती है। मानो भगवान के साथ मिलने पर भी भगवान बिछुड़ न जाए ऐसा एक भाव रहता है, और बिछुड़ने पर उसकी स्मृति ऐसी रहती है जो योग में नहीं रहती। यहाँ फिर वो प्रिया प्रियतम भाव कहते हैं, और प्रिया में भी विश्वकीय और परकीय भाव है, ऐसे भाव इनमें माने मैंने सुना। तो वो प्रकृति का संबंध नहीं, अहम नहीं है। जीव और ईश्वर दो दो चीज कहते हैं ना, ब्रह्म और जीव परमात्मा का अंश कहलाता है ना, तो अंश अंश ही में मिलता है तो उसमें विलक्षणता होती है, तो उसमें एक तो जड़ से छूटना और एक अंश में मिलना, तो दुखों का अभाव तो संसार के संबंध विच्छेद से होता है, और परम आनंद की प्राप्ति परमात्मा से अभिन्नता होने से होती है। ये दो बात।
एक प्रश्न पदार्थ शोषण से सत्तम की सत्ता जो है वो नहीं रहेगी, सत की सत्ता रहेगी, और इधर प्रेम में जो है वो प्रेमास्पद रह गया, प्रेमी नहीं रह गया, दोनों हो गए, इन दोनों प्रणालियों में क्या अंतर
है? थोड़ा फर्क है। वो प्रेमास्पद की जो प्राप्ति होती है उसमें एक आनंद विशेष होता है, लहरों वाला आनंद होता है उसमें, एक विलक्षण आनंद होता है लहरों वाला, और जो तत्पद स्वपद एकता होने पर अखंड शांत समानंद होता है। दोनों में कोई विक्षेप नहीं है, कोई जन्म मरण नहीं है, ये बाधा कोई नहीं है, न होते हुए भक्ति का रस एक विलक्षण है।
राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 27 जुलाई 1981 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बिना सर के मुरली मनोहर दौरे पर हुआ। राम राम राम।
शरणम हरे
लक्षण बताते हैं, तो सबसे पहले प्रज्ञ की परिभाषा करते हैं।
तो जो साधन करते हैं उस साधन से वो सिद्धि पाता है, तो सिद्धि पाने पर उसी साधन को साथ लेकर नाम रखते हैं। तो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो गई वो सिद्ध प्रज्ञ होता है। तो कर्मयोग का नाम यहाँ
आप उनका पालना चाहे
सांख्य बुद्धि योगे विमान सुनो, सांख्य में बुद्धि कह दी योग विषम बुद्धि सुनो, यहाँ से बुद्धि चली गई। इससे पहले प्रज्ञावादा से भाष्य में प्रज्ञा शब्द आया है, परंतु बुद्धि योग का बुद्धि शब्द नहीं आया है पहले। तो यहाँ से चला अंत में ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्त श्यामंत काल भी ब्रह्म निर्वाण मृत्य थी। तुम लोग ब्राह्मी स्थिति बताई, तो स्थित प्रज्ञ है ना, प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो जाए तो बुद्धि स्थिर कैसे होती है? तो बुद्धि स्थिर में दो बात बताई कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रधानंद जिस काल में मनोगतान सर्वान मन में आई हुई जो कामनाएं हैं उन संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, निशेष रूप से त्याग कर देता है और अपने से अपने आप में स्थित होता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो खास बात क्या हुई कि सत असत का जो विवेक होता है उसमें असत का सर्वथा त्याग कर देना और सत के स्वरूप में अपने आप को निरंतर स्थित कर देना जो अपने आप में स्थित है, ऐसी स्थिति का नाम है स्थित प्रज्ञ पुरुष। तो प्रज्ञा स्थिर कब होती है कि जब सर्वथा असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो प्रज्ञा की स्थिरता में बाधक क्या है? बहुशाखा अनंतास्त बुद्धियो अव्यवसायी नाम, एक व्यवसाय निश्चय नहीं करता तब उसकी बहुत बुद्धियां होती है, एक बुद्धि की अनंत शाखाएं होती है, वो एक बुद्धि स्थिर नहीं कर सकता। कारण क्या है कि असत उसका ध्येय रहता है ना, नाशवान पदार्थ जो ध्येय रहते हैं तो नाशवान पदार्थ भी अनंत है और उनके उपाय भी अनंत है, तो उसकी बुद्धि सदा ही स्थिर चंचल रहेगी, स्थिर नहीं होगी। एक बात और याद आ गई, मनुष्य सत्संग सुनने वाले कहते हैं मन स्थिर नहीं रहता, मन स्थिर अतिर है, इसकी बात गीता ने ज्यादा महत्व देकर नहीं कही है, बुद्धि के स्थिर होने की बात कही है। मन है वो तो एक मरण करने वाली चंचल वृत्ति है, तो मन की चंचलता को इतनी दोष ही नहीं है और मन की स्थिरता हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, और बुद्धि स्थिर हो जाए तो निहाल हो जाए आदमी। तो बुद्धि की स्थिरता की बात है, बुद्धि का स्थिर होना मन का स्थिर होना क्या, मन का स्थिर होना कि जब मन लगावे वहाँ लग जाए, हटावे वहाँ से हट जाए, ऐसा होकर एक जगह निश्चल बैठ जाए दीपक जैसे बिना वायु के दीपक एकदम का नहीं, ऐसा मन लग जाए तो स्थिर मन हुआ। तो ये एक ध्यान की अवस्था होती, समाधि अवस्था होती, परंतु बुद्धि की स्थिरता है उसमें समाधि की जरूरत नहीं है, उसमें चंचलता हो स्थिरता हो कार्य प्रवण हो और चाहे एकांत बैठा है निश्चित रूप से तो हो, बुद्धि स्थिर होती है, वो लक्ष्य एक होता है, तो वो एक लक्ष्य कब होता है, जब असत से वृत्ति हट जाती है। व्यवसायी आत्मा का बुद्धि एका, इस योग में निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। क्यों एक होती है? उसका ये परमात्मा एक है, एक परमात्मा देह होने से उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो परमात्मा स्थिर होते, परमात्मा में स्थिर होना क्या है कि मनुष्य अपना लक्ष्य एक बना लेता है, हमें तो अब परमात्मा तत्व की ही प्राप्ति करना है। संसार के सुख और दुख की हमें परवाह नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह नहीं। मन स्वीकार्यार्थी नगण यति दुखम न तो सुखम, वो सुख और दुख को नहीं गिनता, संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता को नहीं गिनता, वो तो एक परमात्मा तत्व को चाहता। ऐसे चाहने वाले की बुद्धि स्थिर हो जाती, वो ठीक वहाँ पहुंच जाए तब तो होती है। उपाय में आरंभ में ही बुद्धि का एक लक्ष्य बन जाता है, तो आरंभ से जब एक लक्ष्य बनता है तो अंत में वो एक में स्थिर हो जाता है, तो बुद्धि के द्वारा ही उसकी परीक्षा होगी। इस वास्ते प्रजाति यदा कामान कामनाओं का त्याग करे, तो कर्मयोग में कामनाओं के त्याग की मुख्यता है, और कामना है ये ही जड़ के साथ संबंध है। संसार का जो जड़ वस्तुओं के साथ संबंध है, ये संबंध तो निरंतर वियोग रूपी अग्नि में जल रहा है। मान मात्र संयोगों की आग लगी हुई है, वियोग हो ही रहा है। शरीर का भी वियोग हो जाता है, संपत्ति का भी, परिवार का भी, जितनी वस्तुएं आपके पास है उनका वियोग प्रतिक्षण होता है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में शरीर आपके साथ रहता हो, कुटुम्ब आपके साथ रहता हो, धन संपत्ति वैभव मान बड़े आदि आपके साथ रहता हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं। हर समय नाश की तरफ जा रहा है, संप्रलय की तरफ जा रहा है, संसार रंग रवि, इनका जीवन तो ही रहा है। तो फिर हमारा संयोग कहाँ है? जो मन में कामना प्रक्रिया है, ये मेरे हो जार, ये मेरे रह जार, ऐसा न हो। ये जो मन में कामना है, बस ये ही संसार के साथ संबंध है हमारे। हमारे साथ संसार का संबंध कहाँ है? जो हमारे मन में अशुद्ध वस्तुओं का आदर है, महत्व है, बस यही खास बीमारी है। तो इसका आदर न करना बुद्धि की स्थिरता का आधार है। बुद्धि में परमात्मा तत्व ही है, उसको प्राप्त करना है और संसार में नहीं फंसना है। नाशवान है, एक क्षण भंगुर है, एक क्षण भी साथ नहीं रहे, तो इसमें क्या करना है? इसके उद्योग बुद्धि, तो ऐसी बुद्धि की विकलितता होती है ना, वो ठीक नहीं है। बुद्धि विचलित न हो, एक ध्येय एक लक्ष्य पर बना रहे, चाहे वो भजन ध्यान करे, चाहे काम धंधा करे, लौकिक करे, चाहे अलौकिक करे, कुछ भी करे, बुद्धि में एक स्थिर बात रहती। जैसे मुसाफिर होता है, बद्री नाम जाना है, ये बात रहती है। बात भी करता है, ठहरता भी है, रात्रि विश्राम भी करता है, भोजन भी करता है, परंतु बद्री नाम जाना ये धुन एक रहती है। इस तरह से स्थित प्रज्ञा वाले की बुद्धि आरंभ से ही परमात्मा की सर्व लगती है। इस बात व्यवसायी आत्मा का बुद्धि भी एका। 41वें श्लोक से 44वें श्लोक तक चार श्लोकों में ये बुद्धि की एक स्थिरता होती है, ये बात कही। तो उनकी बुद्धि एक होती है और उनके बाद दूसरों की अनेक होती है, उसमें कारण क्या है? कि भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, सुख भोगना और संग्रह करना। रुपया पैसा पास में रहे और सुख भोगू, ये खास चीज बुद्धि स्थिर न होने देने में खास कारण है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम और तया वृक्षेतसाम, वो तया कौन? पुष्प दया वाण्य, जो पुष्पित वाणी की से कही, स्वर्ग में ऐसा सुख है, वहां ऐसा सुख है। तो सुख में आसक्ति होने से तो सुख का लोभ लगता है, अगर ये नहीं प्राप्त हो ऐसे भोगों का लोभ लगता है, जो संपत्ति नहीं मिली यही उनका ध्येय हो गया पदार्थ ही, तो तैयार भोग और ऐसे में आसक्त है और सुनी हुई वाणी में आसक्त हो जाएंगे। तो व्यवसायी आपने कहा बुद्धि समाधो ने बुद्धि परमात्मा निश्चय वाली बुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति करना ये वो ही निश्चित है। तो जब बुद्धि भी स्थिर नहीं होती तो वो परमात्मा को प्राप्त कैसे करेगा। तो परमात्मा की प्राप्ति करना हो गए तो स्थिर बुद्धि करना हुआ, स्थिर बुद्धि संबुद्ध स्थिर बुद्धि बन एक परमात्मा तत्व को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य हमारा ध्येय हमारा उद्देश्य एक ही है। ये जितना दृढ़ता से होगा उतना उसका रास्ता जोर से कट जाएगा, फिर वो रास्ता होता ही चला जाएगा, बढ़िया हो ही जाएगा, संदेह नहीं। तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो खास चीज क्या है कि मनोगत संपूर्ण कामनाओं का जिस काल में त्याग कर लेता है। अब कामना की जड़ की कामना कामना होती है, लेकिन ये बताया था ना कि परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा कामना नहीं है, अपने स्वरूप का जो ज्ञान करना बोध करने की इच्छा ये कामना नहीं है, और संसार की सेवा करना है सब कुछ त्याग करना ये कामना नहीं है, ये तीन कामनाएं नहीं होती। और कामना किसका नाम है, जो उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु की चाहना उसका नाम कामना है, और जो नित्य तत्व है उसको चाहना ये कामना नहीं है। जिज्ञासा कह दो, प्रेम पिपासा कह दो, चाहे सो कह दो, ये साधन है। तो परमात्म तत्व जो नित्य चेतन अपना स्वरूप उसकी प्राप्ति की इच्छा वो कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो नित्य नित्य है, निरंतर नष्ट होने वाले इच्छा का नाम कामना है, और जो नित्य है वो रहेगा उसकी इच्छा है वो कामना नहीं है। इस वास्ते वो आवश्यकता है, तो आवश्यकता की पूर्ति होती है और कामना की निवृत्ति होती है। और कामना का भाग दो कर दिया जाए तो संसार की कामना तो नष्ट होती है, परमात्मा की कामना पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। तो पूर्ण होने पर भी कामना वृत्ति होती है और त्याग करने पर भी कामना की निवृत्ति होती है। तो संसार की कामना को त्याग करने से ही निवृत्ति होगी, इसकी कभी पूर्ति होने वाली है ही नहीं, और परमात्मा की इच्छा पूर्ति होगी ये कभी अधूरी रहने वाली है ही नहीं। इस बात प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, तो आत्मनि एव आत्मना तो अपने आप में ही आप संतुष्ट होगा। अब उसके संतोष के लिए कोई दूसरी चीज की जरूरत कभी किंचित मात्र भी नहीं होगी, स्वप्न में भी कि वो चीज मेरे से संतोष हो जाए उसकी बड़ी आवश्यकता ये नहीं रहेगी, क्योंकि चीज की आवश्यकता है नहीं, वास्तव में तो कामना है, उस कामना का चीज की आवश्यकता दिखती है। जो रागात्मक जो राग है ना पदार्थ होगा, उस राग के कारण जो पदार्थ जीते हैं महत्व के, वे बड़े भाई पदार्थ है ये, तो पदार्थ में कुछ है नहीं, वो क्षण मूल है, परंतु कामना मन में होती है तो उसका महत्व जीखता है, और महत्व जीखता है तब तो कामना छोड़ता नहीं। तो संपूर्ण कामनाओं का जब सर्वथा त्याग हो जाए तो फिर अपने आप में संतोष अपने आप ही होगा, अपने आप से विकृत हो कब जाता है, कामनाओं का हो जाता है। जब किसी वस्तु की कामना होती है तो स्वरूप से स्थित होकर मुझे चला जाता है, अरे कामना सर्वथा मिट गई तो अपने स्वरूप में स्थिति होगी नहीं, कहाँ होगी स्थिति, सही होगी आपकी। ये दो ही बात है खास करके, प्रजाति रा कामान सर्वान पर मनोगतान ये त्याग करना पड़ता है, और आत्मनिर्वाह तो हो जाएगा आपका। इसके लिए प्राप्त करने की जरूरत नहीं, मनुष्य जैसे संसार के पदार्थ करने का उद्योग करता है ऐसे उस प्राप्त परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उद्योग करता है, उस उद्योग की जरूरत है। उद्योग तो जो बाहर का है उसके हटाने की, ये जो तुमने पकड़ा है इसको छोड़ना है, इसके छोड़ने पर जो स्वरूप है वो तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सिद्ध है, उसके लिए उद्योग नहीं करना है। आत्मनिर्भर आत्मा दोस्त प्रज्ञा तो देखते पदार्थ प्रज्ञा इसकी प्राप्ति के लिए भी ध्यान भी होता है, जप है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, इससे भी परमात्मा कृपण होता है। इस तरह में भी बात बताइए, छठे अध्याय, छठे अध्याय में कहा यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव उत्तिष्ठते और निष्क्रिय सर्वगामी जो योग की स्थिति होता वो योगी कहलाता है। तो योगी क्या होगा कि यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव चित्त है वो आत्मनि परमात्मा तत्व में ही स्थिर होता है और निष्क्रिय सर्वगामी जो संपूर्ण कामनाओं पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है तब योगी कहलाता है। तो वही बात उसमें, कोई बात इसमें प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मा दुष्ट और वहाँ यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव उत्तिष्ठते निष्क्रिय सर्वगामी जो, तो यहाँ कामनाओं के त्याग करने पर अपने आप में स्थिति फिर हुई और उसमें कामना मन को सब तरह से हटाकर एक परमात्मा लगने से कामना को त्याग हो गया। तो चाहे परमात्मा में लगाकर कामना को त्याग कर दो, चाहे कामना को त्याग कर परमात्मा लगा दो, दोनों मार्ग हुआ। अब दोनों मार्गों में विलक्षणता क्या है कि वो जो योग अभ्यास करके परमात्मा में मन लगाता है उसका विनियतम चित्तम आत्मनिवेश, आत्मा में चित्त स्थिर होता है उसका, और कामनाओं के त्याग से खुद की अपने आप में स्थिति होती है, ये जो अंतर है।
हमारे शरण हरे शरण, हरे शरण हरे शरण शरण
पड़ता है उसका त्याग कर दोगे तो वास्तविक नहीं जाएगा, वास्तविक तो जाता नहीं कभी और ज्यादा हुआ तो है ही नहीं। बोल उसने बोल अवास्तु का पता लग जाए तो अवास्तु का त्याग कर दे, वास्तविकता स्वाभाविक रह जाएगी। अवास्तु क्या है बोलो, इसमें जो आकर्षण है उसका सर्वथा त्याग कर दो। अभी तुम्हें राहत की बात है, इसमें मनुष्य पराधीन नहीं है, तेरा आप साथ ठीक हो जाएगा, वास्तविकता है बैठी तो बच जाएगी ठीक। नारायण 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 नारायण
और अज्ञान दो दो होते हैं, तो असत्य का त्याग कर दिया तो असत्य का त्याग हो गया, लेकिन ये सत्य
नहीं होती, सत्य की प्रतीति होती ही
नहीं,
प्रतीति असत्य की होती असत की प्रतीति होती ही नहीं, प्रतीति प्रतीति का त्याग कर दो सत रह जाएगा, सत असत की प्रतीति जिससे होती है वो सत है। अनुभूति असत त्याग करने हो जाएगी, असत के त्याग करने हो जाएगी, सत होता है अनुभूति दो नहीं होती, सत का अनुभव नहीं होता, सत रूप ही होता है अनुभव, अनुभव रूप ही सत होता, सत की अनुभूति अनुभूति अलग हो सत की हो ये बात नहीं है। ये हाँ जी, इसको समझने के लिए कह सकते हैं अनुभूति का मनु सत्य का अनुभव कैसे हो, सत्य की अनुभूति कैसे हो, और सत्य की अनुभूति क्या है, सत और अनुभूति दो है कि एक है, ऐसी बातें विवेचन किया जा सकता है, बातें कही जा सकती है। उसमें ये कही जा सकती है कि जो सत है उसमें निरंतर स्थित रहना ही अनुभूति है, उसको समझने के लिए तो मैंने पहले कह दिया कि विवेचन करना हो साधक दृष्टि तो कर सकते हैं,
रहने के ज्ञान नहीं तो इसका रूप नहीं होता, एक ही चीज है सच कौन सा अनुभव का होता एक ही बात है। करना हो तो ऐसे करना हो सकता है कि सत्य का अनुभव करना क्या कि सत्य में अटल स्थित रहना ये सत्य का अनुभव करना तो इसमें सत्य में स्थित रहना क्या कि सत्य में स्थित रहना का ये मतलब है कि असत का आदर न करना। जब अनुभव हो जाए सत्य का तो असत का आदर न करना, असत का महत्व अंतकरण से हटाना। तू सद्या क्या करती हूँ करें इसकी बात वही है कि अनुभव तो उसमें एक ही बात है। जिस तरह से अब ध्यान देना भी अनुभव क्या है, अनुभव का निरादर न करना ये आया ना, मतलब असत में स्थित रहने का ये अर्थ हुआ कि सत के अनुभव का निरादर न करना, असत को महत्व न देना, इसी व्याख्या हुई। अब असत को महत्व न देने क्या हुआ कि जैसे अब ध्यान दे रहे आप लोग सुने सभी कि हमारे को जितनी जो वस्तु अभी मिली है, घर है, धन संपत्ति है, परिवार है, शरीर है, ये पहले था क्या? तो कहते पहले नहीं था और अब सदा ही रहेगा क्या? सदा नहीं रहेगा। तो इनको स्थिर मांगना और इनका भरोसा रखना ये असत का आदर है। ध्यान दिया ना आप लोगों ने, ये पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, ये अनुभव है कि नहीं? ये कोई सुनी सुनाई बात है? ठीक बात ही है। मैं किसी के संदेह हो तो बोलो, जो आपको हमारे को संपत्ति मिली है, धन मिला है, वस्तुएं मिली है, व्यक्तियां मिली है, ये पहले अपने पास थी कि आज 100 वर्ष पहले भी हमारे पास थी क्या ये चीजें? और 100 वर्ष के बाद ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, नहीं तो ये तो पलक मारती मिट जाती है। तो ये फिर नहीं रहेगी ये बात सही है कि रहेगी? ये सही है नहीं रहेगी सही? ध्यान देना सबके सब भाई बहन, बहनों तो नहीं है, भाई भाई है, ये ध्यान देना कि ये नहीं रहेगी, पहले नहीं थी। और आप पहले थे कि नहीं थे? आपका भी आपको अभाव का अनुभव है क्या? हम पहले नहीं थे। और आपके अभाव का अनुभव ऐसा होता है कि अगर हम नहीं रहेंगे? बोलो, शरीर नहीं रहेगा, शरीर के साथ हमको हो तो हम नहीं रहेगा, परंतु इनको जानने वाला रहेगा अर्थात अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं है। कोई भी अपने अभाव का अनुभव नहीं कर सकता। तो आप रहते ये नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहेगा और नहीं था उसका भरोसा रखना ये सही है क्या? इनको स्थिर मानना और ऐसा बना रहे ऐसा मानना ये ठीक है क्या? तो रहने वाला है ही नहीं फिर रहने वाला मानना, और ये बहुत जल्दी नष्ट हो सकता, उसका भरोसा रखना, उसके आश्रित रहना, उसको महत्व देना, ये अपने अनुभव का निरादर है। तो सत्य रूप जो अनुभव है उसका तिरस्कार है। इस वास्ते सत्य में अटल रहने का अर्थ हुआ कि ये तिरस्कार नहीं करना। उसमें क्या हुआ? जब एक ही अनुभव है, एक स्थिति है, एक सत्य है, तो उसमें स्थित रहना क्या हुआ? तो ये हुआ कि आपको सत्य का अनुभव है कि हम तो रहते हैं, और ये चीजें नहीं रहेगी, जिसमें ये चीजें नहीं थी नहीं रहेगी तो पक्की बात है ना, तो इसमें तो किसी है ही नहीं। तो इनको महत्व देना, इनके भरोसे रहना, ये सदा मेरे पास बनी रहे ऐसी भावना रखना बिल्कुल गलती है कि नहीं। इस गलती को आदर देना ही अनुभव का निरादर है। अनुभव में स्थित नहीं रहे तो अनुभव में स्थित नहीं रहना ये साधकों के लिए विरूपण किया जा सकता है, परंतु अब सत्य का अनुभव करो तो सत्य रूप अनुभव है ही, हो स्वतः ही सिद्ध है। ये एक बात बहुत दामी है कि नाशवान का भरोसा नहीं रखना। अगर भरोसा रखो तो धोखा होगा, जैसे कोई ठग आदमी ठगे है अपन है वो, और अगर उन्हें पता लग जाए कि ये ठग रहा है तो उस ठगाई में आना कोई बुद्धिमानी है क्या? पता लग गया ठग है और ठग रहा है, बिल्कुल बातें चिकनी चुपड़ी बातें कह रहा है, ये ठीक नहीं है, ठगाई कर रहा है, ठग में अठगाई में आ रहे हैं, ऐसा जानकर फिर ठगाई में आवे, ये बुद्धिमानी है क्या? तो ये जितनी चीजें हैं बिल्कुल ठगाई में आ रहे हैं आप, क्योंकि ये जाने वाली है, आप ठगे जा रहे हो, इनके भरोसे असली काम से वंचित रह रहे हो, तात्विक विचार है अपना कल्याण है उसकी तरफ ख्याल न करके केवल इनके भरोसे बैठे रहना है, क्या ये ठगाई में आना नहीं है क्या? अब ठगाई में आने का पता लग गया फिर ठगाई में आते हो, कम से कम ये बढ़िया का काम है क्या? बताओ। तो ये तमाशा नहीं है, ये खेल नहीं है। अभी आ गए, आपने सुन लिया, मैंने सुन लिया, तमाशा नहीं है ये खेल नहीं है, ये गहरी बात है और बिल्कुल पक्की पकड़ लेनी चाहिए, जीवन में उतार लेनी चाहिए। इनका भरोसा नहीं रखेंगे, इनके आश्रय पर हम जीते हैं ये नहीं रखेंगे, कभी नहीं रहेंगे इनका भरोसा। मान इनके भरोसे क्या है, पलक मारते मारते नष्ट हो जाए उसका क्या भरोसा, उसका क्या सहारा? अगर ये आप बात मान लें तो आपके दुख मिट जाएगा सदा के लिए। जितना दुख होता है सबका सब इसके आधार पर है, जो नाशवान है आप जानते हैं नाशवान, फिर उस ममता कर लेते हैं मेरी है, उसका आश्रय ले लेते हैं, आधार बना लेते हैं, उसको महत्व देते हैं, ये अपने अनुभव का निरादर है। अनुभव पर स्थित नहीं रह रहे है, उसी से ही दुख पा रहे है, इतने में सब बात आ गई, सब मात्र आ गई। आज इस बात का आप विचार करें, चलते फिरते बैठे भी एकांत में भी विचार करें, मेरा कहना माने तो ये विचार करें, आप इतने आए हो तो इस बात को विचार करें, देखें आप समय बर्बाद न करें। आप लोगों का तो ध्यान जाता है कि नहीं जाता है, जाएगा कि नहीं जाएगा, परमात्मा जाने। हमारे को भी जब ये बात मिली तो मेरे को बहुत लाभ हुआ है और मेरे को बहुत बढ़िया बात मिली है, ऐसा मैंने माना है। इस बात से आप लोगों से ही प्रार्थना है कि आप इस बात पर ध्यान दो, आदर दो थोड़ा सा। हमारी पहले नहीं फिर पीछे हमारी नहीं रहेगी, बीच में उनमें ममता कर लेना कहां तक ठीक है। ममता भी इतने दृढ़ कर ले जो आज झूठ कपट बेईमानी भी कर ले, पाप भी कर ले, अन्याय कर ले, साधु विशुद्ध आचरण भी कर ले, कितनी ममता कर लेगी उसमें। वो ममता वाला दुख आपको भोगना पड़ेगा और ये पहले थी नहीं, पीछे रहेगी नहीं।
तो संताप भोगना पड़ेगा इसलिए महादंड होगा। कुछ भी पैसा हो चाहे कुटुंब हो चाहे धन हो चाहे जमीन हो चाहे कुछ भी हो, ये तो केवल खेल है, खेल मिला है, खेल खेलना है। अब खेला अगर तो ममता का है तो खेल कैसे खेला जाएगा? फुटबॉल को ले जाओ और कोई ले जाओ, जितने खेल तमाशे की चीजें फुटबॉल उठा उठा ले जाओ, खेल कैसे होगा? और ये खेल ऐसा है भगवान तो आप ले जा सकोगे नहीं, मन बिगाड़ लो बेशक, अपना पतन कर लो इतना इतना आप स्वतंत्र हो और कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने पतन के, और कुछ नहीं हाथ लगेगा। ध्यान दे तो सुनो, आप जो चीजें मिली है उनको अपनी मानोगे तो अन्याय करके नरकों में जाओगे, दुख पाओगे, इसके सिवाय हाथ कुछ लगने का नहीं है, लाभ किसी तरह का नहीं है, नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं है। इतने पर करते हो कि अनुभूति का निराधर है, अनुभव के वो स्थिर नहीं रहे। अनुभव का निराधर करने के संबंध कोई हत्या नहीं है, मनुष्य की हत्या से भी यह ज्यादा हत्या है। अपने विचार कर सिद्धांत का हनन करे उसी हत्या करता है, कितना बड़ा भाई पाती है, बहुत बड़ा भारी पाप है, उसका उद्धार कभी नहीं होगा। अपने विचार का और अपने अनुभव का ही निराकरण का हत्या करता है, बताओ आप उद्धार कैसे होगा?